एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान और मेरे साथ हैं
आपका दूसरा मेजबान। ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो आपको थोड़ा हिला सकती है। आपके अपने होने का मतलब वजूद का जो आइडिया है ना, उसे शायद जड़ से बदल दे। किताब का नाम है एड योंग की आई कंटेन मल्टीट्यूड्स।
आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, द माइक्रोब्स विद इन अस एंड अ ग्रैंडर व्यू ऑफ लाइफ। हिंदी में कहें तो मेरे अंदर बहुत कुछ है, हमारे भीतर के सूक्ष्म जीव और जीवन का एक ज्यादा बड़ा नजरिया।
बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई फिलोसफी की बात नहीं है, है ना? इसका जो मेन आइडिया है वो आज के टाइम में बहुत जरूरी है।
हाँ, बहुत जरूरी। किताब का सार ये है कि हम इंसान असल में अकेले नहीं हैं। सोचिए, हम एक चलते फिरते बात करते इकोसिस्टम है। हमारे अंदर, हमारे ऊपर खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस।
बाप रे, खरबों!
हाँ, खरबों। और वो सिर्फ मेहमान नहीं है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। असल में वो हमें बनाने में मदद करते हैं।
अच्छा, तो ये सोच तो हमारे हेल्थ को देखने का नजरिया, बीमारियों को समझने का तरीका, एंटीबायोटिक्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, शायद पर्यावरण को भी सब पर असर डालती होगी।
बिल्कुल, ये सवाल खड़ा करती है, क्या हम सच में सिर्फ एक व्यक्ति हैं, या फिर जैसे किताब कहती है, हम बहुत सारी चीजों का एक समूह हैं? यही सवाल आज हमारी बातचीत के सेंटर में रहेगा।
दिलचस्प। तो ये किताब लिखी किसने है? लेखक के बारे में कुछ बताइए।
लेखक हैं एड योंग। वो एक ब्रिटिश अमेरिकन साइंस जर्नलिस्ट हैं, द अटलांटिक मैगजीन के लिए लिखते हैं, और आपको पता है उन्हें कोविड-19 पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर प्राइज भी मिला है।
अरे वाह, पुलित्जर! मतलब बड़े लेखक हैं।
हाँ, उनकी खासियत ये कि वो बहुत मुश्किल साइंटिफिक चीजों को भी ना कहानी की तरह बताते हैं, पढ़ने में मजा आता है।
अच्छा, पर क्या वो खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मतलब इस फील्ड के एक्सपर्ट?
नहीं, यही तो मजे की बात है। उन्होंने कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंसेस पढ़ा है, पर वो खुद रिसर्चर नहीं है। वो हमारी तरह है, एक उत्सुक इंसान। वो सवाल पूछते हैं, शायद इसीलिए उनकी बातें आम लोगों को ज्यादा समझ आती हैं, कनेक्ट करती हैं। वो जटिल साइंस को कहानियों में बदल देते हैं।
ये तो अच्छी बात है, मतलब हमें कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं मिलेगा।
बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं देते, बल्कि उस खोज के पीछे का जो रोमांच है, जो हैरानी है, वो महसूस कराते हैं। वो दिखाते हैं कि साइंस सिर्फ लैब की चीज नहीं, हमारी रोज की जिंदगी से, हमारी पहचान से जुड़ी है।
ठीक है, तो फिर किताब के अंदर चलते हैं। क्या है इसका मेन फोकस, ये अदृश्य दुनिया माइक्रोब्स की?
हाँ, ये किताब हमें सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस की उस छुपी हुई दुनिया में ले जाती है जो हमारे चारों तरफ है, और उससे भी ज्यादा हमारे अंदर है। मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि वो हैं, बल्कि ये दिखाना है कि जिंदगी को चलाने में उनका रोल कितना कितना जरूरी है और कितना अनदेखा किया गया है।
मतलब ये सोच के सारे जर्म्स या कीटाणु बुरे होते हैं, वो गलत है।
बिल्कुल, किताब इसी सोच को तोड़ती है। एड योंग का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि कोई भी जानवर, और हम इंसान भी, अकेला नहीं है। हम सब होलोबायोंट है।
होलो क्या? होलोबायोंट, ये क्या चीज है?
होलोबायोंट, आसान भाषा में मेजबान यानी हम और हमारे साथ रहने वाले सारे माइक्रोब्स, ये सब मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, एक इकोलॉजिकल यूनिट। ये माइक्रोब्स चुपचाप बैठे नहीं रहते, वो हमारे विकास में, हमारे डाइजेशन में, हमारे इम्यून सिस्टम को चलाने में, यहां तक कि हमारे मूड और बर्ताव पर भी असर डालते हैं।
अरे, मूड पर भी?
हाँ, उस पर भी आएंगे। तो किताब कहती है कि वो पुरानी जर्म थ्योरी कि हम हैं और वो कीटाणु हैं और हमें उनसे लड़ना है, वो अधूरी कहानी है।
तो फिर पूरी कहानी क्या है?
यूं कि एक इकोलॉजिकल नजरिया देते हैं। हमारे शरीर कोई जंग का मैदान नहीं है, वो एक घर है, एक हैबिटेट। और जैसे किसी जंगल या तालाब का स्वास्थ्य वहां रहने वाले जीवों की विविधता पर निर्भर करता है, वैसे ही हमारा स्वास्थ्य हमारे अंदरूनी माइक्रोबियल मेहमानों की विविधता और बैलेंस पर निर्भर करता है।
यानी हमें उनसे डरने के बजाय उन्हें समझने और उनकी देखभाल करने की जरूरत है, अपने अंदर के बगीचे की तरह।
एग्जैक्टली, यही नजरिया है। ये किताब आम पाठकों के लिए है जिन्हें साइंस में थोड़ी भी दिलचस्पी है। ये हमें माइक्रोबायोलॉजी की पुरानी खोजों से लेकर आज की एकदम लेटेस्ट रिसर्च तक ले जाती है।
ठीक है, तो फिर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं
जी।
किताब शुरू कहाँ से करती है?
कहानी शुरू होती है इतिहास से। 17वीं सदी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से इन नन्हे जीवों को देखा जिन्हें उन्होंने एनिमैल्क्यूल्स कहा था।
हाँ, सुना है मैंने, पर तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा ज्यादा।
सही कहा, लंबे समय तक या तो उन्हें अनदेखा किया गया या फिर लुई पाश्चर और रॉबर्ट कॉक के बाद उन्हें सिर्फ बीमारियों से जोड़ा गया, मतलब जर्म्स। हमने कहानी का सिर्फ वो नेगेटिव हिस्सा ही पकड़ा।
और फिर माइक्रोबायोम का आइडिया आया, मतलब किसी एक जगह के सारे माइक्रोब्स और उनके जीन्स, और वो होलोबायोंट वाला भी।
हाँ, और ये सब समझने में सबसे बड़ा हाथ रहा डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का। पहले हम सिर्फ उन्हीं माइक्रोब्स को जान पाते थे जिन्हें लैब में उगा सकते थे, मुट्ठी भर।
अच्छा,
लेकिन डीएनए तकनीक ने उसने दरवाजा खोल दिया। हम उन अनगिनत माइक्रोब्स को देख पाए जो हमारी आंतों में, स्किन पर, हर जगह रहते हैं पर लैब में नहीं उगते। एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया सामने आ गई। पता चला जो दिख नहीं रहा था वही कहानी का हीरो है।
कमाल है। और किताब कहती है कि ये सिर्फ हमारे साथ रहते नहीं, हमें बनाती भी हैं। ये कैसे?
ये भी एक जबरदस्त आइडिया है। किताब बताती है कि जानवरों के डेवलपमेंट में, मतलब उनके अंग कैसे बनते हैं, उसमें माइक्रोब्स का बड़ा रोल है। जैसे हमारी आंतें हैं या खून की नलियां हैं, उनके सही से बनने के लिए माइक्रोब से सिग्नल मिलते हैं।
क्या बात करें, मतलब हमारे अपने जीन्स अकेले काफी नहीं है।
बिल्कुल, चूहों और जेब्रा फिश पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उनसे पता चला कि इन माइक्रोबियल सिग्नल्स के बिना अंगों का विकास ठीक से नहीं होता। ये सिग्नल हमारे डीएनए के निर्देशों के साथ मिलकर काम करते हैं।
तो फिर हमारा शरीर सिर्फ हमारे माँ बाप के डीएनए का प्रोडक्ट नहीं है?
ये तो पूरी मैं वाली फीलिंग पर ही सवाल उठाता है।
हाँ, उठाता है। हमें अपने शुरुआती माइक्रोब्स माँ से मिलते हैं जन्म के वक्त, खासकर नॉर्मल डिलीवरी में, माँ के दूध से, फिर हमारे आसपास के माहौल से। तो हम सच में अपने माइक्रोब्स के साथ और उनके जरिए बनते हैं। हमारी पहचान इनसे जुड़ी है जन्म से ही।
और फिर डाइजेशन वाला मामला, मैंने सुना है माइक्रोबायोम को अनदेखा अंग भी कहते हैं।
हाँ, और ये काफी हद तक सही भी है। सोचिए, हम जो फाइबर खाते हैं सब्जियों में, फलों में, अनाज में, उसे हम खुद पचा ही नहीं सकते।
सच में?
हाँ, लेकिन हमारी आंतों में जो करोड़ों बैक्टीरिया हैं वो इसे तोड़ते हैं और तोड़कर ऐसे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे आंतें हेल्दी रहती हैं। गाय या दीमक को देखिए, वो तो घास या लकड़ी पचाने के लिए पूरी तरह अपने पेट के माइक्रोब्स पर ही निर्भर हैं।
अच्छा,
तो हम भी एक तरह से अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं नन्हे साथियों को,
कह सकते हैं। अब आते हैं इम्यून सिस्टम पर। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि ये हमारी बॉडी की आर्मी है, बाहर से कोई दुश्मन आया, हमला करो।
हाँ, यही तो सुना है।
लेकिन योंग कहते हैं ये सोच भी थोड़ी अधूरी है। इम्यून सिस्टम किसी हमलावर आर्मी जैसा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट मैनेजर या डिप्लोमैट जैसा है, या एक पार्क रेंजर समझिए। उसका काम सिर्फ मारना नहीं, बैलेंस बनाना है। बैलेंस? कैसा बैलेंस?
ये तय करना कि कौन दोस्त है, किसे इग्नोर करना है और कौन सच में खतरा है। वो लगातार नेगोशिएट करता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट सिस्टम है।
और इसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है?
वो ट्रेनर हैं, उस्ताद हैं। बचपन से ही जब हम अलग अलग माइक्रोब्स के संपर्क में आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनसे सीखता है। वो सीखता है कि खाने के पार्टिकल्स पर हमला नहीं करना, अपनी बॉडी की सेल्स पर हमला नहीं करना, और असली दुश्मन को कैसे पहचानना है। यहीं पर वो हाइजीन हाइपोथेसिस वाली बात आती है।
हाँ हाँ, सुना है। मतलब जो हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा साफ सफाई अच्छी है, वो शायद गड़बड़ कर रही है।
कुछ हद तक यही आइडिया है। माना जाता है कि आजकल के सुपर क्लीन माहौल की वजह से इम्यून सिस्टम को जरूरी माइक्रोबियल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। नतीजा, वो कन्फ्यूज हो जाता है और कभी कभी हानि रहित चीजों पर ही हमला करने लगता है, जैसे परागकणों पर, एलर्जी या शरीर की अपनी कोशिकाओं पर, ऑटोइम्यून बीमारियां।
ओ, जैसे अस्थमा या पेट की वो क्रोन डिजीज।
हाँ बिल्कुल, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हेल्थ का मतलब कीटाणुओं का सफाया नहीं, बल्कि इम्यून सिस्टम और माइक्रोब्स के बीच एक हेल्दी बातचीत, एक बैलेंस है।
ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, और दिमाग वाली बात, आपने कहा था मूड पर भी असर, वो गट ब्रेन एक्सिस।
हाँ, गट ब्रेन एक्सिस, ये बहुत ही रोमांचक फील्ड है। अभी जानवरों पर स्टडीज हुई हैं, उनसे पता चलता है कि आंतों के बैक्टीरिया हमारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल बिहेवियर, इन चीजों को प्रभावित कर सकते हैं।
कैसे?
वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, वही केमिकल जो हमारे ब्रेन में मूड कंट्रोल करते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा हमारी आंतों के माइक्रोब्स बनाते हैं।
एक मिनट रुकिए, क्या आप कह रहे हैं कि हमारे एहसास, हमारी भावनाएं, वो भी पूरी तरह हमारी नहीं है, उनमें भी इन माइक्रोब्स का हाथ है? ये तो थोड़ा डरावना भी है,
है ना? ये किताब ऐसे बड़े सवाल खड़े करती है। मैं कहाँ खत्म होता हूँ और मेरे माइक्रोब्स कहाँ से शुरू होते हैं? और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। यूंग दिखाते हैं कि सिम्बायोसिस, मतलब अलग अलग जीवों का साथ रहना, ये पूरी लिविंग वर्ल्ड में कितना कॉमन है और एवोल्यूशन का एक बड़ा इंजन रहा है ये।
कोई मजेदार एग्जाम्पल है?
एक बहुत फेमस है हवाईयन बॉबटेल स्क्विड का। छोटा सा समुद्री जीव है। रात में शिकारियों से बचने के लिए वो अपने अंदर रहने वाले चमकने वाले बैक्टीरिया विब्रियो फिशरी की लाइट इस्तेमाल करता है, एक तरह का बायोलॉजिकल कैमोफ्लाज।
कमाल है, बैक्टीरिया को घर मिला, स्क्विड को सुरक्षा।
बिल्कुल, और ऐसे अनगिनत उदाहरण है। एफिड्स और उनके अंदर के बैक्टीरिया जो उन्हें पोषण देते हैं, गहरे समुद्र के ट्यूब वर्म्स जिनका ना मुंह है ना पेट, वो पूरी तरह सल्फर खाने वाले बैक्टीरिया पर जीते हैं। मैसेज ये है कि जीवन सिर्फ कंपटीशन और स्ट्रगल से नहीं, बल्कि पार्टनरशिप और सहयोग से भी आगे बढ़ा है।
लेकिन अगर ये पार्टनरशिप इतनी जरूरी है, तो हमारे आज की लाइफस्टाइल, एंटीबायोटिक्स, प्रोसेस्ड फूड, इसका क्या असर हो रहा है?
और यहीं पर चिंता की बात आती है। यूंग इसे बर्बाद मंदिर कहते हैं, द रुइंड टेम्पल। एंटीबायोटिक्स का अंधाधुन इस्तेमाल, वो उसे इकोलॉजिकल नेपलम कहते हैं। जैसे नेपलम बम जंगल को जला देता है, अच्छे बुरे पेड़ सब खत्म, वैसे ही एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर के इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं।
ओ।
इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जिसमें फाइबर नहीं होता, सी सेक्शन डिलीवरीज का बढ़ना जिसमें बच्चे को मां के जरूरी माइक्रोब्स कम मिलते हैं, जरूरत से ज्यादा सफाई, ये सब हमारे माइक्रोबियल समुदायों की डाइवर्सिटी को, मतलब विविधता को कम कर रहे हैं।
और इसका नतीजा?
बीमारियां बढ़ रही हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हाँ, माइक्रोबायोम की ये घटती विविधता, इसका सीधा लिंक उन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारियों से जोड़ा जा रहा है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। डायबिटीज, मोटापा, आंतों की समस्याएं, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज। हम अनजाने में अपनी सदियों पुरानी माइक्रोबियल विरासत को खो रहे हैं।
ये तो वाकई चिंता की बात है। तो क्या कुछ उम्मीद है? क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं?
हाँ, किताब उम्मीद भी जगाती है, खासकर माइक्रोबियल मेडिसिन की तरफ देखकर। प्रोबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक्स, उनका खाना पर रिसर्च बढ़ रही है।
हाँ, दही वगैरह में होते हैं प्रोबायोटिक्स।
हाँ, पारंपरिक रूप से, और अब सप्लीमेंट्स भी आते हैं, हालांकि उनके असर पर अभी और रिसर्च चाहिए। एक और क्रांतिकारी चीज है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, FMT।
ये क्या है? नाम थोड़ा अजीब है।
हाँ, इसमें एक हेल्दी डोनर के स्टूल से माइक्रोब्स निकालकर बीमार इंसान की आंत में डाले जाते हैं। सुनने में अजीब लगे, पर यह सी डिफिसाइल जैसे जानलेवा इन्फेक्शन के इलाज में बहुत कामयाब रहा है। ये दिखाता है कि हम माइक्रोब्स से लड़ने के बजाय उनके साथ काम करके हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं।
अच्छा, तो मेन मैसेज ये हुआ कि हमें अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को एक किले की तरह नहीं देखना चाहिए जिसकी रक्षा करनी है, बल्कि एक बगीचे की तरह जिसे सींचना है, जिसका ख्याल रखना है।
बिल्कुल, हेल्थ सफाई में नहीं, बैलेंस और डाइवर्सिटी में है।
ये सोच में वाकई एक बड़ा बदलाव है। अगर हम इस किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें पॉइंट में कहना चाहें तो क्या होंगे?
मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, खुद की परिभाषा बदलें। हम अकेले नहीं, हम होलोबायोंट हैं, एक इकोसिस्टम। हमारी पहचान हमारे माइक्रोबियल साथियों से जुड़ी है। दूसरा, जंग नहीं, जुगलबंदी। हेल्थ का मतलब कीटाणुओं को खत्म करना नहीं, उनके साथ बैलेंस बनाना है। शरीर बगीचा है, बैटल ग्राउंड नहीं। तीसरा, पार्टनरशिप से विकास। जीवन में नई चीजें अक्सर सहयोग से आई हैं, सिर्फ लड़ाई से नहीं। सिम्बायोसिस एक बड़ा इनोवेटर है। चौथा, मॉडर्न लाइफ का खतरा। हमारी साफ सुथरी प्रोसेस दुनिया हमारी माइक्रोबियल विरासत को नुकसान पहुंचा रही है, इससे नई बीमारियां आ रही हैं। और पांचवा, हेल्थ केयर में इकोलॉजिकल सोच। हमें इलाज को बगीचे की देखभाल की तरह देखना होगा, बैलेंस और डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना होगा।
ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। और अगर हम इंडिया के बारे में सोचें, हमारा जो पारंपरिक खान पान है, तरह तरह के अनाज, दालें, सब्जियां, फिर दही, अचार जैसी फर्मेंटेड चीजें, ये तो शायद हमारे माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, है ना?
बिल्कुल, हमारी डाइट में नेचुरली बहुत डाइवर्सिटी और फाइबर होता था। दही तो प्रोबायोटिक्स का खजाना है।
लेकिन दूसरी तरफ एंटीबायोटिक्स, यहाँ तो जरा सी छींक आने पर भी लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं।
हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। एंटीबायोटिक्स का मिसयूज और ओवरयूज हमारे माइक्रोबायोम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ एक तरफ पारंपरिक बुद्धिमत्ता है, दूसरी तरफ मॉडर्न दवाइयों का गलत इस्तेमाल। बैलेंस जरूरी है।
किताब में यकीनन कुछ ऐसी बातें होंगी जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, कुछ कोट्स या आइडियाज जो आपको खास लगें।
हाँ, कई हैं। जैसे एक तो ये कि हम सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं, हम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये सीधे सीधे हमारे सेल्फ के आइडिया को चैलेंज करता है।
सही बात है, हमारी सीमाएं कहाँ हैं? दूसरा,
इम्यून सिस्टम एक सेना नहीं बल्कि एक पार्क रेंजर है। ये इम्यून सिस्टम के रोल को बिल्कुल नए तरीके से दिखाता है, संतुलन बनाना, मैनेज करना।
ये एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियों को समझने में मदद करता है और
असर को दिखाता है, एक चेतावनी है
कि सोच समझ कर इस्तेमाल करें।
हाँ।
और चौथा, हमें जुड़ाव सिस्टम और समग्रता वाली दवा की जरूरत है। हम एक बगीचे की देखभाल कर रहे हैं। ये हेल्थ के प्रति एक ज्यादा केयरिंग, ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है।
ये विचार सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम क्या बदल सकते हैं?
काफी कुछ, और मुश्किल नहीं है। सबसे पहले खाना, अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा रंग और वैरायटी लाएं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, फाइबर रिच फूड, ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। प्रोसेस्ड जंक फूड कम करें, दही, इडली, डोसा, अचार जैसी फर्मेंटेड चीजें खाएं।
अपनी थाली को इंद्रधनुष बनाना है।
बिल्कुल। दूसरा, एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर लें और तभी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। वायरल बुखार खांसी में इनका कोई रोल नहीं। डॉक्टर से पूछें क्या ये वाकई जरूरी है, और अगर लेनी पड़े तो बाद में दही वगैरह से मदद मिल सकती है।
हाँ, फाइबर रिच डाइट और दही मदद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के बारे में डॉक्टर से बात करें, पर सिर्फ उन पर निर्भर ना रहें। तीसरा, सफाई। हाथ धोना जरूरी है, लेकिन हर चीज को एंटीबैक्टीरियल से रगड़ना शायद ठीक नहीं। थोड़ा मिट्टी में खेलना, पालतू जानवरों के साथ रहना, ये इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए अच्छा है।
थोड़ी गंदगी अच्छी है।
हाँ, एक बैलेंस। चौथा, जन्म और बचपन। हो सके तो नॉर्मल डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के माइक्रोबायोम के लिए बेस्ट स्टार्ट देते हैं। और आखिर में पर्यावरण, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल, प्रदूषण कम करना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, मिट्टी और पानी के जरूरी माइक्रोब्स के लिए भी अच्छा है, जिन पर हमारा खाना निर्भर करता है।
तो कुल मिलाकर अपने अंदर और बाहर के इकोसिस्टम के प्रति थोड़ा ज्यादा जागरूक, थोड़ा ज्यादा सम्मानजनक रवैया।
अच्छा, इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए तो शायद यही कि मैं कौन हूँ इसकी परिभाषा कितनी बदल गई है। ये सोचना कि मेरे विचार, मेरा स्वास्थ्य, सब मेरे अंदर के इन खरबों नन्हे जीवों से जुड़े हैं, ये दिमाग घुमा देता है।
मेरे लिए शायद सिम्बायोसिस का आइडिया कि जीवन सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि पार्टनरशिप है, ये बहुत पॉजिटिव सोच है। और हेल्थ को बगीचे की तरह देखना, ये सिर्फ बीमारी से लड़ना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना, बैलेंस बनाना है। ये अप्रोच, ये सच में हेल्थ को बदल सकती है।
तो आखिर में सवाल यही रह जाता है ना, अगर हम वाकई एक चलता फिरता, सोचता समझता इकोसिस्टम है, तो स्व की हमारी जो पुरानी समझ है उसका क्या? हमारी कहानी कहाँ खत्म होती है और इन माइक्रोब्स की कहानी कहाँ से शुरू होती है? शायद यही सवाल है जिसके साथ एड योंग हमें छोड़ते हैं सोचने के लिए और शायद अपने अंदर के इस अनदेखे यूनिवर्स को थोड़ा और जानने के लिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।